अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है एक ही रास्ता। सुबह 11 बजे का वक्त होगा। प्रसिद्ध उद्योगपति अरुण कुमार की विशाल कोठी में भीड़ उमड़ पड़ रही थी। उनकी पत्नी निशा ने अपने बेटे राहुल को जहर देकर स्वयं भी जहर खा लिया था। आंगन में एक तरफ उनके बेटे राहुल का शव पड़ा था और दूसरी तरफ उनकी पत्नी निशा, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थीं, पड़ी थीं। अरुण कुमार ने अपनी पसंद की लड़की से निशा से विवाह किया था। निशा ने उषा बनकर उस घर में अपना प्रकाश फैला दिया था। विवाह के मौके पर आए सभी जनों ने निशा की सूरत तथा सीरत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। आज ऐसा क्या घटित हो गया कि उसने बेटे को जहर पिलाकर स्वयं भी विषपान कर लिया। जितने मुंह थे उतनी ही तरह की बातें हो रही थी। निशा का कुंदन सा रंग अपने निशा नाम को सार्थक कर रहा था। उसकी झील जैसी आंखों में वीरानी छाई हुई थी। उसके पास डॉक्टर तथा पुलिस इंस्पेक्टर दोनों ही खड़े थे। उसने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ अपनी गमगीन आंखें उठाकर पूछा, आप मेरा बयान लेने आए हैं ना? इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। निशा ने कहा, इंस्पेक्टर, पैसे की चाह मनुष्य से घृणित कार्य करवा लेती है। पैसे की लालसा के आगे खूनी रिश्ते भी धरे रह जाते हैं, और यही हमारे घर में हुआ है और आगे भी होने वाला है। अब तक अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैंने मुंह सी लिया था। चूंकि अब मेरे पति पर हमला होगा, इसीलिए कारण बताना पड़ रहा है। इंस्पेक्टर, मरता आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। न जाने किस गुनाह की सजा के कारण मुझे विषपान करना पड़ा और मुझ निरपराधिनी को अपराधी समझा जा रहा है। मेरा अंत समय पास आता जा रहा है। अब आप सबके सामने मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। तो सुनिए इंस्पेक्टर, मेरे बेटे के कातिल मेरे जेठ विनोद कुमार हैं। सभी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने रुक कर कहा, आप सबूत मांगेंगे, वो मेरे पास है। उसकी निस्तेज आंखों में वेदना का अथाह सागर उमड़ उमड़ कर लोगों को उद्वेलित कर रहा था। उस जनसमूह में ऐसा एक भी नहीं था जिसकी आंखें भर ना आई हों। धीरे धीरे वो वेदना युक्त समुद्र शांत होता गया। उसका शरीर शिथिल होता जा रहा था। आंखों में वेदना के स्थान पर करुणा उमड़ आई थी। कुछ देर पहले जिन लोगों की आंखों में उसके प्रति घृणा दिखाई पड़ रही थी, वो अब तिरोहित हो चुकी थी और उसका स्थान उत्सुकता तथा दया ने ले लिया था। उसके इन शब्दों ने कि मेरे जेठ कातिल हैं, मैं सबूत दूंगी, जादू का सा असर दिखाया था। उसने भरी आंखों से उस जन समूह को निहारा। अपने प्रति सहानुभूति देख उसने मुक्ति की सांस ली। उसे संतोष हुआ कि जिन लोगों ने उसे अपराधिनी समझकर घृणा से मुंह सिकोड़ लिया था, अब उसे निरपराधिनी समझ रहे हैं। इससे बढ़कर उसके लिए क्या सुख हो सकता था? प्राण देकर उसने अपनी निर्दोषिता साबित कर दी थी। अपने प्राणों से ज्यादा उसने अपनी अस्मत तथा झूठे कलंक को महत्व दिया था। चलते समय वो इतना बड़ा लांछन लेकर कैसे जाती? दीपक का तेल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूं ऊपर की अदालत में मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगी, पर नीचे की अदालत में तो प्राण देकर ही मैं अपनी निर्दोषिता साबित कर सकती थी। वो मैंने विषपान करके किया है। मेरी कोख में इस खानदान का दीपक पल रहा है, पर मैं जानती हूं इसका भी वही अंत होगा जो मेरे बेटे राहुल का हुआ है। बीच में ही निशा के जेठ चिल्लाए, ये झूठ बोलती है, इसका भेद खुल गया था, इसी कारण इसने आत्महत्या की है। ये कलंकनी है, इसका काला मुंह कोई ना देख पाए, इसलिए इसने ये ढोंग रचा है। ये एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। ये तो मुझे भी अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहती थी, पर जब मैंने इसे धिक्कारा और कहा कि ये बात मैं सभी को बता दूंगा, तब कोई उपाय ना देख इसने हमारे घर के दीपक राहुल का खात्मा कर दिया। जब मैंने रंगे हाथों इसे पकड़ा तो अब ये सती सावित्री बनने का ढोंग रच रही है, लोगों की सहानुभूति अर्जित करना चाहती है। ये कहकर उन्होंने आग्नेय नेत्रों से निशा की तरफ ताका। व्यंग से मुस्कुराती हुई निशा बोली, इंस्पेक्टर, अभी जेठ जी को समय नहीं मिला है कि विष की शीशी को फेंक सकें। अभी तक सबूत इनके कमरे में है। हाथ कंगन को आरसी किया, अभी खोज करवाकर देख लीजिए। और हाँ, वो दूध का गिलास जिसमें इन्होंने जहर मिलाया था मेरी अलमारी में सुरक्षित रखा है, आप जांच करवा लीजिए। इंस्पेक्टर अचकचा कर बोले, जब विष का गिलास आपकी अलमारी में है तो राहुल की मौत कैसे हुई? निशा बोली, इंस्पेक्टर पहले मेरे जेठ को पकड़िए, तभी मैं विस्तार से बताऊंगी। ये सुनते ही विनोद अपने कमरे की तरफ भागा। बीच में ही इंस्पेक्टर के बलिष्ठ हाथों ने उसे पकड़ लिया, पर जैसे ही विनोद को सिपाहियों को सौंपता, उसी समय विनोद ने जेब से पिस्तौल निकालकर अरुण कुमार को अपनी गिरफ्त में लेकर दहाड़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर अगर तुम आगे बढ़े तो मैं अरुण को गोली मार दूंगा। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। जैसे ही विनोद अरुण को लेकर आगे बढ़ा, यकायक बिजली की तेजी से निशा ने पास पड़ी छड़ी उठाकर उसके हाथ पर प्रहार कर दिया। पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ी। फटी फटी आंखों से विनोद निशा को निहारने लगा। वहां खड़े इंस्पेक्टर सहित सभी मुंह बाएं निशा को ताकने लगे। सभी हैरान थे कि जो स्त्री अंतिम सांस ले रही थी उसमें इतना बल कहां से आ गया। थोड़ी देर के लिए लोग चित्र लिखित से खड़े रहे, फिर सबसे पहले अरुण में चेतना का संचार हुआ। उसने दौड़कर निशा को हृदय से लगाकर कहा, निशा तुम जिंदा हो, ये कहकर उसकी नब्ज देखने लगा। निशा हंसकर बोली, अब हाथ छोड़ो भी, सभी लोग देख रहे हैं। अरुण बोला, निशा तुम मरते मरते बच कैसे गई, ये क्या गोरख धंधा है। निशा मुस्कुराती हुई बोली, मैं मरी ही कब थी, जो कि जिंदा रहने पर आश्चर्य कर रहे हो, ये तो एक नाटक था। आपको और राहुल को बचाने का मेरे पास एक यही रास्ता था, हमारा राहुल घंटे भर में होश में आ जाएगा। ये सब सुनकर विनोद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो चीखा, हाँ हाँ मैं ही राहुल को मारना चाहता था, इसके बाद मैं अरुण को भी अपने रास्ते से हटाता, और ये सब मैं निशा के कंधे पर बंदूक रख कर करता। बचपन से ही मैं अरुण से अंदर ही अंदर जलता था, क्योंकि अरुण मेधावी था और मैं मंदबुद्धि था। मेरे मन में हीनता की भावना ने जन्म ले लिया था। बड़ा होने पर अरुण ने लाखों कमाए और मैं उसके टुकड़ों पर पल रहा था। मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। ऐसे में निशा को देखकर मुझे अपनी सफलता पर पूर्ण विश्वास हो गया। निशा अद्वितीय सुंदरी थी। उसे देख पहले दिन से ही मेरा मन विचलित हो चुका था। मुझे अरुण के भाग्य पर ईर्ष्या होने लगी थी। मैंने कई बार निशा की असमत पर हाथ डालना चाहा, पर हर बार वो चतुराई से निकल जाती थी। अपनी दाल गलती न देख मुझे निशा को फंसाना पड़ा। मुझे लगा ये मेरा भेद कहीं खोल न दे, इसी कारण मुझे ये सब कार्यक्रम जल्दी बनाना पड़ा। ये शब्द कहकर वो पागलों के समान हंसने लगा। अप्रत्याशित रूप से भेद खुल जाने से शायद वो पागल हो गया था। विनोद को सिपाहियों के सुपुर्द करके इंस्पेक्टर ने आदर से निशा की तरफ देखते हुए कहा, निशा जी अब शुरू से आखिर तक विस्तार से बताइए कि आपने किसकी सहायता लेकर इतना बड़ा कार्य कर डाला। आपको देखकर कोई भी कह सकता था कि आप बहुत जल्द इस संसार से विदा होने वाली हैं, और राहुल जो मृत दिखाई पड़ रहा है कैसे घंटे भर में उठ बैठेगा। निशा ने गर्दन झुकाकर कहा, इंस्पेक्टर मैं जन्म की अभागिन हूँ। मेरे माता पिता ने शायद मेरी नियति पढ़कर ही मेरा नाम निशा रखा था। मैं अतुलनीय रूप लेकर भी अभागिन पैदा हुई थी। शायद नियति ने इतना रूप देकर भाग्य से मुझे वंचित कर रखा था। बचपन में ही मैं माता पिता दोनों को खो चुकी थी। शैशव की मुस्कान कभी मेरे चेहरे पर नहीं खिली थी। मामा मामी के अंकुश में पली मैंने कभी प्यार का स्वाद ही नहीं चखा था। मेरे जीवन में प्रताड़ना तथा उपहास के सिवा कुछ भी नहीं था। विवाह की उम्र आते ही मामा मामी ऐसे वर की तलाश में जुट गए जहां उन्हें कुछ देना ना पड़े बल्कि कुछ प्राप्त ही हो जाए। फिर गहरी सांस लेकर वो बोली, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। अरुण कुमार विधुर थे, इनके 6 साल का एक बेटा था। उन्होंने मेरे विवाह की बात चलाई। मेरा अतुलनीय रूप तथा सौम्यता देखकर अरुण बाबू को लगा कि मुझ जैसी दुर्दुराई लड़की उनके बेटे राहुल को माँ की ममता जरूर देगी, पर वो जबरदस्ती मुझसे विवाह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अकेले में मुझसे बातें की। मैं उनके इस व्यवहार पर मुग्ध हो गई। मैंने कहा, अरुण बाबू मेरा विश्वास कीजिए, अपनी औलाद से ज्यादा मैं राहुल को प्यार दूंगी। उसे कभी भान नहीं होने दूंगी कि मैं विमाता हूँ। मैंने बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत किया है। दुख क्या होता है इसका अनुभव मुझसे ज्यादा किसी को नहीं होगा। दुख तो मन की वो स्थिति है जो सही तो जा सकती है लेकिन कही नहीं जा सकती। अपने ऊपर पड़े दुखों को भोग कर क्या मैं दूसरों को दुख देने की कल्पना कभी कर सकती हूँ? नहीं अरुण बाबू, जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं आने दूंगी। अब आपको मुझ पर विश्वास हो तभी विवाह की सहमति दीजिएगा। अविश्वास पर कभी जिंदगी नहीं टिकती। मेरी स्पष्टवादिता देखकर शायद अरुण बाबू समझ गए थे कि जिस झोली में वो अपने बेटे राहुल को डाल रहे हैं वो हमेशा प्यार से भरी रहेगी। मेरे सास ससुर सभी इस संबंध के पक्ष में थे। पैसे की इनके घर में कमी नहीं थी। इन लोगों को पता था कि रईस की बेटी शायद बच्चे को प्यार न दे पाए। यही कारण था कि इन सभी लोगों की सहमति से हमारा विवाह संपन्न हो गया। मुंह दिखाई की रस्म पर सभी ने मेरे रूप और सौम्यता की प्रशंसा के पुल बांध दिए। पर दो वासना और कुटिलता से भरी आंखें देखकर मैं सहम गई। वे आंखें थीं मेरे जेठ विनोद बाबू की। मनुष्य की खाल में ये मुझे भेड़िया नजर आए। मुझे लगा इस आदमी से मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। राहुल मुझसे ऐसा हिल मिल गया मानो मैं उसकी सगी माँ हूँ। बच्चा ममता भरी आंखें बहुत जल्दी पहचान लेता है। वो मुझसे एक पल को भी जुदा नहीं होना चाहता था। अरुण ये सब देखकर निश्चिंत मन से अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गए। घर में अरुण को सभी लोग प्यार करते थे क्योंकि वे बहुत समझदार और निश्चल स्वभाव के थे। इसके अलावा वही घर का खर्च चलाते थे। लाखों का व्यापार उन्हीं के बलबूते पर चल रहा था। विनोद बाबू बड़े थे। बड़े होने के नाते इनका घर में मान भी था। इन्होंने अपनी सच्चरित्रता की धाक जमा रखी थी। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि ये किसी का अहित भी कर सकते हैं। अरुण की कामयाबी पर ये अत्यंत प्रसन्नता दिखाते थे पर मन ही मन इनसे जलते थे। भाई की कमाई पर उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कभी कभी शायद वे ये सोचकर क्षुब्ध भी हो जाते होंगे और शायद इस अटूट संपत्ति का मालिक बनकर ऐश करना चाहते थे। ये तो बहुत पहले मेरे पति तथा राहुल को खत्म कर देते पर इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि तब संदेह इन्हीं पर होगा। मेरे इस घर में प्रवेश करते ही इन्हें अपनी सफलता पर पूर्ण विश्वास हो गया। मैं भी माता थी और इसी की ओट में ये आसानी से ये दोष मुझ पर थोप सकते थे। पहले इन्होंने अपने प्यार का वास्ता देकर मुझे बरगलाना चाहा, पर मैंने जब इनके षड्यंत्र में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया और इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि तुम सा पापी संसार में दूसरा ना होगा। अपने देवता जैसे भाई और उसके बेटे को खत्म करना चाहते हो? मैं ये बात अपने पति अरुण को बता दूंगी जिससे कि वो तुम जैसे नराधम से सतर्क रहे। इन्होंने व्यंग से हंसते हुए कहा था, हाँ हाँ जरूर कहो, देखता हूँ कौन तुम्हारी बात पर विश्वास करता है। पर याद रखना, ये बताने के बाद तुम पर क्या बीतेगी ये तो समय ही बताएगा। मैं डर गई पर मैंने सोचा ये बात मुझे अरुण को जरूर बता देनी चाहिए, चाहे इसको कहने के बाद मुझे कितने ही लांछन सहने पड़े। और हुआ भी वही। मेरे पति अरुण मुझ पर बरस पड़े और मुझे धिक्कारते हुए कहा, छी छी, ऐसी बातें भाई साहब के लिए तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? अरे वो तो देवता हैं, उनसे भाई बिरले ही मिलते हैं। तुम ही हम दोनों भाइयों के बीच फूट डलवाना चाहती हो। इतनी पढ़ी लिखी और समझदार के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मुझे अब लग रहा है कि मेरा चुनाव गलत था। ये कहकर गुस्से से भरे ये कमरे से बाहर चले गए। मैं जड़वत हो गई। मेरी रही सही आशा जो पति पर केंद्रित थी टूट गई। किससे कहती, सास ससुर सभी तो जेठ जी को आदर और प्यार की दृष्टि से देखते थे। जेठ जी के दो मुखौटे हैं ये कौन विश्वास करेगा। हार कर मैं चुप होकर बैठ गई। एक रात जब घर में कोई न था मेरे जेठ जी ने मेरी इज्जत लूटनी चाही। मैंने किसी प्रकार भागकर अपनी इज्जत बचाई। अब मैं समझ गई कि इस घर में मेरी अस्मत भी सुरक्षित नहीं है। मेरे जेठ की आंखें मेरी खिल्ली उड़ाती नजर आती और मैं सहम जाती। अपने बेटे राहुल के प्रति मैं हमेशा सतर्क रहती। खाना दूध सभी कुछ मैं पहले कुत्ते को खिलाकर फिर उसे देती थी। मैं सोचती थी कि ऐसा कितने दिन चलेगा। मुझे यह अच्छी तरह से पता था कि मेरे जेठ का पहला शिकार मेरा बेटा राहुल ही होगा। जेठ ने जब मेरी सतर्कता देखी तो वे भी चौकन्ने हो गए। इन्हें चौकन्ने देखकर मुझे लगा कि मैं अकेली इनसे पार नहीं पा सकूंगी, मुझे किसी बाहर के आदमी की सहायता लेनी होगी, पर वो आदमी विश्वास पात्र हो तभी काम होगा। ऐसे में मुझे अपने पड़ोसी डॉक्टर सक्सेना का ख्याल आया। ये मुझे बेटी के समान प्यार करते थे। मेरे पास एक ही उपाय बचा था कि अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाकर उनसे सहायता मांगूं। ये हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं और इनका सभी आदर करते थे। डॉक्टर की तरफ कृतज्ञता से देखते हुए निशा ने कहा, डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया। इन्हीं की कृपा से आज मेरे पति और बेटा राहुल सही सलामत हैं। डॉक्टर साहब की बुद्धिमानी के कारण ही इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ है। अब आप डॉक्टर साहब से पूछिए कि इन्होंने क्या योजना बनाई थी। डॉक्टर सक्सेना ने गंभीरता से उत्तर दिया, इंस्पेक्टर, मैं निशा को बेटी के समान प्यार करता हूं। मुझे इसकी करुण कथा सुनकर बहुत तरस आया। एक असहाय लड़की एक जाल साज से पार नहीं पाएगी, ये मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने कहा, निशा बेटी, अब इस नाटक का अंत जल्दी ही हो जाना चाहिए, देर होने से खतरा बढ़ सकता है। बेटी, तुम ही को उस खूनी को मौका देना होगा जिससे वो हमारे जाल में फंस जाए। मैंने ही कहा था कि आज ही से मेरी योजना पर अमल कर दो। मैंने ही सलाह दी थी कि दूध का गिलास जो तुम लेकर राहुल को पिलाने जाती हो उसे जानबूझकर रख कर थोड़ी देर के लिए काम का बहाना बनाकर चली जाना और वहां से दूसरा दूध का गिलास लेकर जो दवा मैं देता हूँ डालकर दे देना, फिर वही दूध राहुल को पिला देना। बाहर रखे गिलास को सावधानी से अलमारी में बंद कर देना। घबराना मत, राहुल एक घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा। फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं उसे मृत घोषित कर दूंगा। ये दूसरी दवा तुम खा लेना। इसे खाते ही धीरे धीरे तुम्हारा शरीर नीला होता जाएगा। तुम्हारी जबान से अटक अटक कर शब्द निकलेंगे। ऐसा लगेगा कि तुमने विषपान कर लिया है और थोड़ी देर में तुम्हारा अंत होने वाला है। यहां भी मैं पुष्टि कर दूंगा कि तुमने जहर खाया है, पर विश्वास मानो, तुम्हारी ताकत में जरा भी फर्क नहीं आएगा। तुम्हारी आंखें भी निस्तेज होती जाएंगी, पर आधे घंटे में तुम सामान्य हो जाओगे। जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही निशा दूध का गिलास रख कर दूसरे कमरे में गई, विनोद को मौका मिल गया और उसने विष की शीशी निकालकर दूध में विष डाल दिया। शायद बहुत पहले से ये विष खरीद चुका था और मौके की तलाश में था। निशा की सतर्क आंखें दरवाजे की झिर्री से ये सब देख रही थीं। विनोद के बाहर निकलते ही वो फौरन वहां पहुंच गई और दूध का गिलास बदल दिया। विष वाला गिलास उसने अलमारी में बंद कर दिया और दूसरा दूध का गिलास जिसमें मैंने दवा डलवा दी थी राहुल को पिला दिया। जब दूध पीते ही राहुल अचेत हो गया तो विनोद को अपनी सफलता पर विश्वास हो गया। वो समझ गया कि विष ने अपना काम कर दिया है। अब हर किसी का संदेह निशा पर ही होता, क्योंकि वो विमाता थी। योजना तो उनकी यही थी कि किसी प्रकार निशा को माफी दिलवाकर उसी के द्वारा अरुण का भी वही अंत करवाते जैसा कि राहुल का हुआ था। पर निशा के जहर खाने से उसकी योजना बदल गई। अब उसने निशा के बारे में झूठी बातें कहकर उसे दोषी करार कर दिया। उसने सोचा कि निशा तो मर रही है, अब ये राज उसके सिवा कोई नहीं जान पाएगा। किसी दिन मौका देखकर वो अरुण को ठिकाने लगाकर समस्त संपत्ति का एकमात्र वारिस बन जाएगा। पर हमरे मन कछु है कर्ता के कछु और वाली कहावत चरितार्थ हो गई। इस धूर्त ने ये नहीं सोचा कि ऊपर भगवान भी है जो निर्दोषों की रक्षा करते हैं। फिर डॉक्टर हंसकर बोले, तो इंस्पेक्टर, मैंने नाटक का पटाक्षेप कर दिया ना, अब आपकी तरफ से मुझे जाने की अनुमति है ना। इंस्पेक्टर ने प्रशंसा भरी दृष्टि से उनकी तरफ ताकते हुए कहा, डॉक्टर, अब आप एक दूसरा पेशा भी शुरू कर दीजिए, वो है जासूसी का। जैसी प्रतिष्ठा आपने डॉक्टरी में पाई है, शायद जासूसी में उससे भी ज्यादा बाजी मार लेंगे। ये कहकर वो खिलखिला उठा। निशा ने भरी आंखों से सास ससुर के पैर पकड़कर कहा, पिताजी, माँ, मुझे सजा दीजिए, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने ही आपके एक चिराग को आपसे जुदा कर दिया है, पर विश्वास मानिए माँ, दो चिरागों को बचाने के लिए मैंने लाचारी में यह कदम उठाया था। ये कहकर वो सिसकने लगी। सास ने उसे कलेजे से लगाते हुए भरी आंखों से उत्तर दिया, बेटी आज तो मैंने एक कपूत खोया है, पर तूने तो मेरे दो सपूतों को बचाकर इस खानदान पर जो उपकार किया है उसे हम जीवन पर्यंत भूल नहीं पाएंगे। ये कहकर उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। जिठानी के पैर पकड़कर निशा बोली, जीजी सबसे ज्यादा गुनाहगार तो मैं तुम्हारी हूँ, मैंने ही तुम्हारे सौभाग्य में आग लगा दी है, किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं, मुझे सजा दे दो जीजी, मुझे मारो, मैं इसी के योग्य हूँ। जिठानी विभा ने उत्तर दिया, निशा इसमें किसी का दोष नहीं, ये तो मेरे प्रारब्ध में लिखा था। होने को भला आज तक कोई मिटा पाया है? मेरे पति इतने गिर जाएंगे ये सुनकर ही मैं लज्जा से मस्तक नहीं उठा पा रही हूँ। विश्वास मानो निशा, एक खूनी की पत्नी कहलाने से अपना वैधव्य मुझे कहीं ज्यादा पसंद है। तुम्हारी जगह मैं होती तो वही करती जो तुमने किया है। तुम्हारी समझदारी और सरल स्वभाव ने मेरे हृदय में घर कर लिया है। तुम्हारा नाम आज से घर में निशा न होकर उषा पुकारा जाएगा, क्योंकि इस खानदान के डूबते सूरज को तुमने उषा बनकर अपनी लाली से अतिरंजित कर दिया है। लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण। ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।